लक्ष्मण हनुमान मंदिर फरीदाबाद में रविवार के प्रातः काल के भागवत प्रवचन में श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के भिन्न अवतारों का वर्णन है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। आज 25वें श्लोक में हम भगवान के एक अवतार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। पंडित जी आप श्लोक पढ़ें, हम आपके पीछे आवृत्ति करेंगे।
अथासो युग संध्यायाम् दस्यो प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासो युग संध्यायाम् दस्यो प्रायेषु राजसो जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासो युग संध्यायाम् दस्यो प्रायेषु राजसो जनिता विष्णु यशसो नामना कलके जगत्पति।
और कोई कीजिए आवर्ती, पढ़िए।
अथासो युग संध्यायाम् दस्यो प्रायेषु राजसो विष्णु यशसो नाम्ना कल्कि जगत्पति। अथासो युग संध्यायाम् दस्यो प्रायेषु राजसो जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्कि जगत्पतिः।
माताजी
यथा असौ युग संध्यायाम् विष्णु प्रायेषु राजसो यजना विष्णु यशसो
तो श्लोक के शब्दों को देखेंगे। पहले अथ असाओ युग संध्यायाम, अथ उसके बाद मतलब इससे पहले जो अवतार का वर्णन हुआ है उसके बाद, इससे पहले अवतार कौन से का कल वर्णन हुआ है, कल के श्लोक में कौन सा 24वें श्लोक में किस अवतार का वर्णन हुआ है जी? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बुद्ध का हुआ है। इससे पहले कल बुद्ध का हुआ है, कल बुद्ध के अवतार का वर्णन हुआ है। तो बुद्ध के कल युग के अंदर बुद्ध का अवतार हुआ है। और आज जो बात चल रही है उसमें अथ का मतलब इसके बाद मतलब बुद्ध के बाद। बुद्ध असौ, असौ का मतलब वही का मतलब एक ही भगवान। कब दोबारा भगवान अवतार लिया, कब लिया? युग संध्या याम, युग की संध्या। संध्या का मतलब दो युगों को जोड़ना। तो कल युग जहां समाप्त होगा और जहां सतयुग शुरू होता है उसको बोलेंगे संधि। तो कल युग के समाप्ति और सतयुग के आरंभ में, तो कल युग की समाप्ति के समय एक और अवतार आएंगे जो सतयुग की को आरंभ करेंगे। तो क्यों आएंगे, प्रश्न ये उठता है, क्यों आएंगे उस संध्या के समय में? तो उसके कारण लिखे दूसरे लाइन में, उसका कारण है। कारण क्या है? दस्यु कहते हैं डाकू को। दस्यु का मतलब जो दूसरों को लूट ले। और जो कोई आपको लूटता है तो आप किसके पास फरियाद लेकर जाते हैं? आपका घर में कोई चोरी हो, आपको कोई लूट ले तो आप किसके पास फरियाद लेकर जाते हैं? सरकार के पास ना, राजा के पास। और यहां डाकू कौन हो गया? राजासु। जिसके पास फरियाद ले जानी है वही डाकू हो गया। प्रायशु, प्रायशु मतलब अधिकांश, 100 में से 99% जो शासन करने वाले होंगे, जो शासक होंगे, जो रक्षक होंगे, वही भक्षक बन जाएंगे। जो जिनके पास आपको शिकायत ले जाना चाहिए आपकी चोरी की, वही बड़े डाकू हो जाएंगे। तो दस्यु प्रायशु राजसु, तो प्राय सारे राजा, 90%, प्राय का मतलब 90% से ऊपर, राजा सारे बहुत बड़े डाकू बन जाएंगे, लुटेरे बन जाएंगे। तो उस समय क्या होगा? उस समय होगा जनिता। जनिता का मतलब जन्म होगा। किसका जन्म होगा, कहां जन्म होगा? जनिता विष्णु यशसो, एक ब्राह्मण जिसका नाम विष्णु यश होगा उसके घर में जन्म होगा। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म होगा। ये उसका नाम ये होगा नामिना। उसका नाम क्या होगा जिसका जन्म होगा? कल्की। नामिना कल्किर, उसका नाम कल्की होगा। और वो कौन होगा? जगतपति। वो जगत का पति होगा, वो भगवान। तो भगवान कल्की के अवतार के विषय में भविष्यवाणी इस श्लोक में भागवत में कही गई है। भागवत का लिखने का काल है महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद का। ये समय है महाभारत का, रचिता व्यासदेव के द्वारा इसका रचना हुई। और कलयुग चलेगा, कितना कलयुग चलेगा? 43,000 साल से ऊपर चलेगा, 43,20,000 साल चलेगा। सतयुग कलयुग अभी 4,32,000 साल चलेगा उसमें से, तो इतना ये कलयुग चलेगा। इस कलयुग के अंत में, तो इतना पहले, इतने लाख साल पहले इसकी भविष्यवाणी भागवत ने की, ये बात यहां बताई जा रही है। तो सिद्धांत यह है कि शास्त्र में भगवान के अवतार के विषय में वर्णन होता है पहले, तभी उसको अवतार माना जाता है। किसी को अवतार मानने के लिए दो विशेष रूप से प्रमाण होता है, कि उसके विषय में शास्त्र में पहले तो उल्लेख होना चाहिए, और उसका कार्य और उसका जो विशेष रूप से जिस उद्देश्य से वो आते हैं ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो एक अद्भुत ऐश्वर्यमय उनका कार्य होता है, जो सामान्य व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो ऐसा करना संभव नहीं है, असंभव कार्य संपन्न करते हैं। तो भगवान के अवतारों का, तो श्री चेतना महाप्रभु ने चेतना चरितमृत में शिक्षा में बहुत अवतारों का भिन्न वर्णन किया है। तो ये सब शक्ति आवेश अवतार है, इनमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं। कुछ अवतार हैं बुद्धा आदि अवतार, ये शक्ति आवेश अवतार है। इनका आध्यात्मिक जगत में कोई अलग लोक नहीं है, अथवा इनके पूजा प्रतिष्ठा करने वालों के लिए वहां जाएंगे ऐसा नहीं है। केवल इस जगत के अंदर किस विशेष कार्य के लिए भगवान अपनी शक्ति उसमें आविष्ट करते हैं और वो भगवान का कार्य सिद्ध कर लेते हैं। एक भगवान के स्वांश अवतार, विभंश, विभिन्न अंश। स्वांश का मतलब स्वयं भगवान विष्णु तत्व आते हैं, विभिन्न अंश का मतलब जीव तत्व में भगवान, जैसे ब्रह्मा आदि है, नारद आदि, ये भी भगवान के अवतार है, ब्रह्मा व्यास नारद आदि। लेकिन ये विभिन्न अंश हैं, ये हैं जीव, लेकिन इसमें भगवान ने अपनी विशेष शक्तियां ऐसे संचित कर दी हैं कि उन्होंने कोई विशेष कार्य किए हैं। तो बुद्ध अवतार का वर्णन होने के बाद कल्कि अवतार का वर्णन है। तो शब्दों का अर्थ तो आपने समझ में आया इस श्लोक का, इसका भावार्थ में क्या लिखा है पढ़िए तो पंडित जी, थोड़ा एक एक लाइन करके थोड़ा। तो ये बात अपने जैसे कई के होंगे कहाँ, उसके इस गांव का भी वर्णन है कहाँ, हाँ इसमें इसका जहां जन्म लेंगे उस जगह का वर्णन भी है। संबल ग्राम में, तो एक तो संबल मुरादाबाद के पास रास्ते में जाते एक संबल ग्राम है, एक बार हम सत्संग करने वहां गए थे कि ये संबल ग्राम ये रहेगा, अथवा नाम तो बदलते रहते हैं, बहुत समय बीत जाएगा कौन स्थान संबल रहेगा, लेकिन ये नाम है, ये नाम लिखे हैं। इसलिए इस अर्ध कुंभ अभी 2007 में था मेरे ख्याल में, हाँ जनवरी 2007 में अर्ध कुंभ था मेरे ख्याल, है ना। तो वहां चारों ओर एक बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, कल्कि भगवान अवतार ले लिया, कल्कि भवन अवतार ले लिया, और जितने पोस्टर थे उसमें फोटो वो बीबीटी के स्कान में से वो घोड़े के ऊपर लिया था। तो हमने पूछा भाई अवतार लिया है उसके अपने फोटो भी नहीं है, फोटो तो हमारे किताब से ले जाके चुरा के लगा रहा है, तो अवतार कहां से असली आया होगा, जो फोटो भी असली नहीं है, फोटो तो हमारा ले जाके लगाया है, तो अवतार कहां से असली होगा। तो हमारे जहां शिविर था उसके सामने शंकराचार्य जी का शिविर था, तो उस शिविर में गया कि भाई कल्कि अवतार आ गए। शंकराचार्य जी ने मर्यादा में ऊपर बिठाया, भाई अवतार आया है तो बैठो। बिठाया तो उसके जो सेवक थे चेले थे वो कहने लगे महाराज अवतार आ गए हैं। तो एक भक्त हमारा उधर था घनश्याम गुजराती, वो उठ के ऊपर बोला ये भगवान है, इसको बोलो विश्वरूप दिखाए, ये भगवान है तो विश्वरूप दिखाओ ना, ये सबको धोखा दे रहा है, ऐसे जाके स्टेज ऊपर उसने हंगामा कर दिया। तो मुस्कुराते हुए शंकराचार्य उनसे पूछा तो आप कल्कि हैं तो आपका पिता का नाम तो विष्णु यश होगा ना, बोला नहीं। फिर तुम्हारा पिता ब्राह्मण, बोला नहीं। तो बोले फिर तुम कैसे कल्कि अवतार हो गए, तो शास्त्र में तो उसका नाम लिखा हुआ है, तो ये तो पूछेंगे तो नाम लिखा है शास्त्र में उसका, तो आपका नाम है कि नहीं है इसमें, नहीं है। तो फिर वो पब्लिक के बीच में बेचारा बहुत बड़ा ऐसे हो गया, लेकिन इतना बड़ा प्रचार कल्कि अवतार का हो गया था, इतना बड़ा प्रचार पूरे कुंभ में चारों ओर से पोस्टर लगे हुए। तो ये भगवान के अवतार भारत के अंदर, किसी ने बोला कि आजकल बजे एक नया मॉडल मोबाइल का रोज बनाती है कंपनी, कोई कहता है कि आज मोटर का नया मॉडल बनता है जापान में, तो हिंदुस्तान में रोज एक नया अवतार का मॉडल बनता है। ये है यहाँ अवतारों की इतनी भरमार हो रही है, रोज जो घर से नाराज होता है वो अवतार बन जाता है। तो इसलिए शास्त्र ने अवतारों की ऐसी भरमार को रोकने के लिए उसके लिए कुछ जिसको कहा जाता है कुछ टेस्ट रखे हैं कि इसका नापदंड रखा के ऊपर उतारता है कि नहीं देख लेना। और विशेष से कोई बहुत आग्रह करे कि मैं अवतार हूं और आ ही गया हूं, तो फिर तो उससे पूछना चाहिए, तो आप तो पहले जब समुद्र मंथन हुआ था तो आपने कच्छ का अवतार भी लिया होगा, कच्छप अवतार हुआ होगा ना, क्योंकि समुद्र में मंदराचल पर्वत डूब रहा था, तो आपकी पीठ के ऊपर धारण किया था आपने, होगा लिया होगा। और जब वो मंथन कर रहे थे इतने सारे देवता असुर, और जब वो पर्वत हिल रहा था तो आपकी पीठ ऐसे खुजा रही थी, आपको नींद आ गई थी, आप तो भगवान कच्छप। अब अगर आप अवतार लेके आए हैं तो थोड़ी सी उस लीला का भी दर्शन प्रदर्शन कीजिए, सो जाइए, आपकी पीठ के ऊपर पत्थर तो रख, एक पहाड़ तो हमसे नहीं उठेगा, एक 101 क्विंटल का पत्थर रखते हैं और फिर मंथन करते हैं महाराज, आपको अगर थोड़ा सा खुजली जैसा हो और नींद आ जाएगी तो फिर हम आपका पूजा प्रतिष्ठा करेंगे, और आप बच गए तो करेंगे, और नहीं रहे तो फिर तो भगवान नहीं रहे आप ना, तो ऐसे ये सारे प्रमाण है पूछने के। आप तो सौ तो पहले कृष्ण अवतार में आए होंगे, गोवर्धन पहाड़ आपने उठाया था, अब तो छोटा हो गया, चलो उठाते हैं, चलो उसको ऊपर उठा के दिखाओ। तो ये सारे शास्त्रों में इसलिए अवतारों के विषय में ऐसे, राम जी के अवतार में आप आए होंगे तो एक सेतु तो बनाओ, पत्थर फेंको तुम्हारे पत्थर तैरने लगेंगे। तो ये सब प्रमाण इसलिए दिए हैं कि अवतार ऐसे किसी आदमी के कहने से नहीं हो जाता है, अवतार के लिए शास्त्रों में प्रमाण होता है। तो यहां विशेष रूप से कहा है कि ये अवतार विष्णु यश के घर में और संबलपुर ग्राम में दो युगों की संधि के समय में होने वाला है। हो गया वो जो अवतार हुआ था, वो एक्सीडेंट मर गया, क्या बात है। ये तो वो कल की अवतार, ये तो जहां तहां इस अवतारों की भारत में बहुत भरमार है। और ये पाखंड कलयुग में बहुत, जैसे जैसे राजा डाकू हो जाएंगे ना, ऐसे असल में ये सब अवतार ये भी पाखंड ही हैं। ये भी लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों के भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके धर्म की भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। भगवान से हटा के वो उनको बहुत दुर्मार्ग के, बहुत गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी भाव में, भावार्थ में?
यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप के अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युग में, संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्ययुग के आरंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कल्कि इन चार युगों का चक्र मास चक्र की भांति रहता है। वर्तमान युग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। इसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद 5,000 वर्ष बीत चुके हैं तथा 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष है। इस काल के बाद कल्कि अवतार होंगे कि भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता विद्वान ब्राह्मण विष्णुयश होंगे और उनका ग्राम संबल बताया गया। जैसा कि ऊपर कहा चुका है कि ये सारी भविष्यवाणी कालक्रम में सिद्ध होंगी। भागवत की यही हमारी
तो यहाँ एक प्रकार से भविष्यवाणी भागवत में कल्कि अवतार के विषय में की गई है। कल्कि क्या करेगा इसका वर्णन आगे आएगा कि कल्कि के आने का उद्देश्य क्या है, कल्कि करेंगे क्या। यहाँ एक चीज जो बताई गई है कि उस समय जैसे बढ़ता आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे राजा लोग जितने भी हैं शासक ये सब बहुत लुटेरे चोर होते जाएंगे। और भागवत के बारे स्कंद में तो आया है विशेष रूप से के इतने सरकार टैक्स लगाएगी, इतना लोगों के ऊपर कर लगेगा कि लोग शहर छोड़ के जंगलों में भाग जाएंगे। अभी भी ऐसे लगता है कि रोड के ऊपर चलते हुए टैक्सों, और आपने देखा है कि ट्रेन के टिकट के ऊपर जो असली किराया होता है वो तो लिखा होता है 1,000 रुपया और टैक्स लिखी होती है 1,500 रुपया। तो टैक्स बढ़ती इतनी जा रही है। कोई हमको कह रहा था अभी लोग गाड़ियां लेते हैं ना हायर परचेज किस्तों पे, ये पेट्रोल का दाम इतना होगा, पेट्रोल किस्तों पे लाना लेना पड़ेगा, गाड़ियां मुफ्त में मिलेंगी। पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है। तो कहने का भाव है कि इतनी हर चीज कलयुग के अंदर एक बहुत अद्भुत वर्णन मिलता है कलयुग के इस डाकू वाली बात का। उदाहरण एक महाभारत में, महाभारत में नहीं है लेकिन पांडवों के माध्यम से बताया गया है कहीं, कि जब कलयुग आने का समय हो गया था, अभी तो पांडव यहाँ थे पृथ्वी के ऊपर, तो महाराज युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए रोज 2-1 घंटे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया करते थे। जब वो भगवान के ध्यान में बैठते थे तो अपने भाइयों को दरवाजे के ऊपर बाहर खड़ा कर देते थे कि कोई आए तो उसके शंका का समाधान कर देना, उसकी समस्या का जल्दी से करना, उसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो एक दिन भगवान के भजन में महाराज तो अंदर बैठे हुए थे, पहले दरवाजे पे भीम खड़ा था, तो कोई आदमी भागता हुआ आया कि महाराज बहुत बड़ी परेशानी की बात है, महाराज युधिष्ठिर से मिलना है, आप जरा उनसे मिलवा दीजिए। बोला महाराज तो भगवान के भजन में, बताइए आपका समस्या क्या है, मैं आपकी सेवा करूंगा। बोला आप समस्या पूछते हैं तो सुन लीजिए, समस्या ये है कि हम रास्ते से आ रहे थे, हमने देखा था एक कुआं था, कुआं के अंदर से पानी निकालना, एक आदमी पानी निकालने के लिए एक बाल्टी पानी का निकाला और बाल्टी पानी के निकालने से 9 बर्तन थे, बहुत मटके 9 भर गए। बोला बहुत अच्छी बात है, 9 मटके भर गए तो बहुत अच्छा बड़ा होगा बाल्टी। बोला ये बात तो अच्छी है निकल गया, लेकिन फिर हमने देखा हमारे सामने बहुत आश्चर्य ये हुआ कि 9 के 9 मटके वापस उस बाल्टी में डाली, बाल्टी आधी पड़ी थी, वही बाल्टी से 9 मटके भर गए और उसी में वापस जाना तो वो आधी पड़ी थी, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करो महाराज। भीम ने कहा ये तो बड़ा प्रश्न आपका ऐसा है, इसका तो महाराज ही उत्तर दे पाएंगे, ये मेरे लिए संभव नहीं है, कोई आपको किसी ने परेशान किया होता तो हम आपका समाधान करते, गदा लेके चलते, इसमें तो इसका काम नहीं है, महाराज के पास जब आगे गए तो अर्जुन खड़ा था, महाराज से मिलना है। बोला महाराज भजन में बोलिए, सेवा बोलो। सेवा तो क्या बताऊं, आ रहा था खेत बहुत अच्छा हरा भरा था, चारों ओर खेत को बाढ़ दी हुई थी और बाढ़ इसलिए दी थी कोई उसके अंदर पशु जाए खेत को खराब न करे। आश्चर्य हमने ये देखा कि बाढ़ ही खेत को खा रही थी। अरे बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोला ऐसे हो रहा था, बताओ इसका। हाँ बोला मेरे को मालूम नहीं है, जाओ महाराज के पास। तो ऐसे 2-3 और प्रश्न पूछे, लेकिन यहाँ 2 प्रश्न या पूरे ही प्रश्न कर दे। आगे सहदेव जी खड़े थे तो कहा मुझे मिला महाराज से मिलना है। बोला मिलना है तो जाके मिल लो। नहीं महाराज तो भजन कर रहे अभी नहीं मिल सकते, सेवा मैं कर सकता हूँ आपकी, तो आपको सेवा करनी है तो बताइए एक समस्या है। अभी हम आ रहा था, गाय ने एक बछड़ी को जन्म दिया। बछड़ी तो बहुत बड़ी अच्छी सुंदर सी होना चाहिए, माँ को गाय को बछड़ी को चाटना चाहिए, लेकिन बछड़ी को गाय चाट नहीं रही थी, खा गई। बोला गाय बछड़ी को खा गई, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। बोला हुआ है, मैं देख के आया। तो सहदेव जी को कहा कि महाराज से मिलना है। बोला थोड़ी देर है, समस्या बताओ। बोला समस्या ये है, आ रहा था एक आदमी सुई के सोराख के अंदर से हाथी गुजार रहा था, हाथी पूरा निकल गया, पूछ अटक गई। बोला ऐसे कैसे हो गया? बोला हाथी निकल गया, पूछ अटक गई। हाँ अटक गई। बोले तो महाराज से पूछना पड़ेगा। तब तो महाराज के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महाराज महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अभी महाराज के पर्दे के पीछे महाराज बैठे हुए थे ध्यान में, तो महाराज तो अभी ध्यान में थे, तो कुछ प्रश्न पूछता है। बोला पहाड़ों का बहुत दुर्गम रास्ता था, रास्ते के जाने का कोई मार्ग था नहीं, एक पगडंडी थी, पगडंडी के ऊपर तो बहुत तूफान आया, बहुत पत्थर गिरे हुए थे, जाना मुश्किल था, बहुत बड़ा प्रयास किया, रास्ता नहीं मिल रहा था। इतने में अचानक कहीं से एक साधु आया, अपने गमछे से एक धागा निकाला और पत्थर को बांध के ऐसे फेंका, पत्थर हट गया, रास्ता खुल गया। महाराज ने बोला इसको पकड़ो पकड़ो, जाने मत देना, जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो। इतनी देर में ये तो चला गया। चारों भाई अंदर आए। बोला महाराज अब क्या करें? बोला ये कहां गया, कौन व्यक्ति था, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ। बोला महाराज वो तो निकल गया, है तो नहीं। बोला बात क्या है, कौन था, पकड़ना क्यों कह रहे हैं? बोला ये कलयुग था, हमें सावधान करने आया था। बोला महाराज कलयुग था, सावधान करने आया था, इसको पकड़ना है तो हम बाद में पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमसे ये प्रश्न पूछ रहा था, इसका अर्थ क्या है बताइए। तो भीम ने कहा कि मुझसे ये प्रश्न किया था कि कुएं से एक बाल्टी से 9 बर्तन भर गए और 9 बर्तन वापस डाले तो बाल्टी खाली पड़ी थी। महाराज जी से कह रहे कल जो कहने आया था, अभी तक घर में एक व्यक्ति कमाता था, 9 आदमी का पेट पालन कर सकता था, अब कल युग ऐसा भारी आएगा कि 9 मिलके कमाएंगे, एक घर में बीमार होगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उसका पेट भरना भारी पड़ जाएगा। बोला ये खाता नहीं ऐसे पड़ा है, इसको निकालो घर से। ये कल युग का बहुत बड़ा भयानक रूप है। कहीं हम ये बात बता रहे थे कथा, तो एक आदमी कथा के बाद रोता हुआ आया। बोला हम तो 5 बेटे थे हमारे बाप के, अकेला बाप मास्टर जी था, हम 5ों को पढ़ाया लिखाया, घर बना के दिया, शादी कराई, लेकिन बाप जब बीमार हुआ तो 5ों में से एक ने भी उसकी देखभाल नहीं की। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा भयानक रूप है कि अकेला एक व्यक्ति सबका पालन पोषण करता था और अब सब मिलके एक का करने को तैयार नहीं है। घर में एक काम नहीं करता है तो भी दुनिया चल नहीं रही है, ऐसा परेशान कलयुग की। तो इसके कारण सारी जो परिवार संगठित है वो तितर भितर होकर टूट के अलग अलग हो जाएंगे। ये कलयुग का पहला वार है। और दूसरा, अर्जुन ने आगे कहा महाराज वो खेत को बाढ़ खा रही थी, लेकिन बाप जब बीमार हुआ तो 5ों में से एक ने भी उसकी देखभाल नहीं की। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा भयानक रूप है कि अकेला एक व्यक्ति सबका पालन पोषण करता था और अब सब मिलके एक का करने को तैयार नहीं है। घर में एक काम नहीं करता है तो भी दुनिया चल नहीं रही है, ऐसा परेशान कलयुग की। तो इसके कारण सारी जो परिवार संगठित है वो तितर भितर होकर टूट के अलग अलग हो जाएंगे। ये कलयुग का पहला वार है। और दूसरा, अर्जुन ने आके कहा महाराज वो खेत को बाढ़ खा रही थी, इसका क्या अर्थ है? बोला इसका अर्थ है कि शासक ही भक्षक बन जाएगा, जिसको रक्षा के लिए खड़ा किया है वही भक्षक बन जाएगा। वो इंदिरा गांधी का किसने किया था एसेसिनेशन? उसके अपने अंगरक्षक ने ना, जिसको अंगरक्षक करके रखा गया था कि गार्ड था जो पर्सनल, उसी ने तो गोली मारी थी ना। तो इसका अर्थ क्या, जिसको आप रक्षक करके रखोगे वही मारेगा ना। ज्यादातर घरों में चोरी कौन करता है? जिसको घर में रखा जाता है चौकीदार, वही तो चोरी का प्रबंध करता है। देखो मालूम है इसे घर में क्या है, तो किसी को बुला के लाता है बेचारा। तो ये तो हुए छोटे छोटे चोर, लेकिन सरकार चारों ओर से चोरी, ये अभी तो कलयुग बहुत लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त हालत क्या है चारों ओर से। किसी वक्त में एक पेपर में आया था, हमने पाकिस्तान में उस जमाने में पढ़ा था, कुछ डाकू ने एक बस को लूटा। बस लूटने के बाद सारे लोगों के पैसे इकट्ठे करके गिने तो 15,000-16,000 थे, उसके मुंह के ऊपर फेंक दिया। बोला ले जाओ वापस, इसने पैसे से हम डाका नहीं डालेंगे। अरे भाई क्यों नहीं डालोगे? बोला 20,000 तो देना पड़ेगा पुलिस को, पता लगेगा सब। तो 4,000 क्या घर के भरेंगे? तो उसके चार्जर के घर से भरेगी क्या, इतने पैसे भी नहीं लाए साथ में, तो ये कौन डाका डालेगा। तीन पुलिस कमिश्नर थे, जा रहे थे जहाज में साथ। अमेरिका का पुलिस कमिश्नर कहने लगा, हमारे देश में अगर कहीं कोई वारदात हो जाए, कोई झगड़ा अथवा डाका लग जाए, तो हम 24 घंटे में आदमी को पकड़ लेते हैं। तो स्कॉटलैंड का था, उसने बोला 24 घंटे बहुत ज्यादा है, हम तो 12 घंटे में उसको पकड़ गए। तब बैठा हुआ था हमारे इस देशों का आदमी, क्या भारत का कि पाकिस्तान का, कौन था मालूम नहीं। उसने बोला, आप दोनों टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें 24 घंटा लगता है, तुम्हें 12 घंटा, हमें 7 दिन पहले पता होता है कहां क्या होना है। तो ये कलयुग का भयानक रूप है कि जिसको रक्षा के लिए रखा हुआ है वो ही आपका भक्षण करता जाएगा, बाढ़ खेत को खा रही। नकुल ने कहा, अरे मेरे से तो महाराज पूछा, गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और बछड़ी को गाय खा गई। बोला, बेटियों को मां पहले तो संसार में आने नहीं देगी, आ गई तो बेच के खा जाएगी। ये कलयुग का एक बहुत बड़ा भयानक रूप दूसरा है। लड़की तो, ये तो अभी तो बहुत दूर नहीं, थोड़े दिन तो पहले देखने को मिल रहा था, अल्ट्रासाउंड में बच्ची है तो गिरा दो, खा गई कि नहीं खा गई, खाने को और क्या कहते हैं, बच्ची को जन्म से पहले खा गई मां। और अभी भी कोई ऐसे जगह है जहां बच्चियों को बेचा जाता है। तो ये कलयुग में जिसको जिसको कन्या कह के दान किए देने के लिए भगवान ने एक बहुत बड़ी बहुमूल्य वस्तु दी थी, कन्या दान किया जाता था, उसका इतना अपमान होगा कि उसका अपना जननी उसको जन्म से पहले ही मार के खा जाएगी। ये कलयुग का बहुत बड़ा भयानक रूप देखने को मिलेगा। तब सहदेव जी कहते हैं, महाराज वो हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई, ये क्या था। बोला, लोग शादी मुरादी में लाखों रुपये खर्च करेंगे, लेकिन कोई साधु महात्मा ने कहा 100 रुपया चाहिए दिया जलाना है मंदिर में, बोला नहीं है, हमारे पास नहीं हो सकता है, पूछ अटक जाएगी, हाथी पूरा गुजर जाएगा। लाखों शादी में 50 लाख रुपया खर्च करेंगे कोई बात नहीं, पंडित जी कहेगा मेरे को 1000 रुपया कम से कम शादी के लिए, ये पंडित जी इतना क्या करेगा, 100 रुपये में तेरा काम नहीं चल सकता क्या। ये पूछ अटक गई, पंडित बेचारा पंडित हाथी की पूछ की तरह पीछे रह गया, पूरा हाथी गुजर गया। इतना नाप सनाप खर्चा करेंगे, लेकिन सद्भाव को सद अच्छे काम के लिए 1 रुपया भी देने के लिए, अच्छे भले आदमी के पास जाता है ना कोई भक्त दान के लिए, तो वो आदमी कहता है अभी आदमी नहीं है, थोड़ी देर के बाद आना, वही मालिक बोलता है अभी आदमी नहीं है। तो कभी कभी भक्त भी कोई ऐसे होते हैं, बोला अभी थोड़ी देर आप ही आदमी बन जाओ ना। सचमुच कहीं तो एक भक्त ने कहा कि हम उधर गए थे उसके पास, भाई उसने पहले फोन करके कहा था कि हम आपको दान दें, हम गए तो वो टेबल के नीचे छुप गए और बोला कि बोलो है नहीं। तो ऐसे लोग, ये पूछ सबकी अटक जाती है और लाखों करोड़ों का, तो लोग बड़ा, देखो कितना बड़ा शो चल रहा है। देखा है कोई छोटा सा उत्सव होता है तो कितना बड़ा भारी उत्सव लोग करते हैं, भोजन का इतना प्रबंध है कि लाखों लोगों के लिए 50 डिशेज है, लेकिन एक भूखा प्यासा बाहर खड़ा होगा उसको टुकड़ा एक सूखा भी देने को तैयार नहीं। ये कलयुग का बहुत बड़ा भारी ऐसा, ये समय और ज्यादा खतरनाक आने लगेगा भविष्य में। तब सबने बोला, महाराज आपको क्या बोला जो आपने उसको कहा कि पकड़ो पकड़ो। बोला, मेरे तो बोला कि पगडंडी जैसा एक ही रास्ता था चलने को, बहुत दुर्गम रास्ता था, उसके ऊपर भी पत्थर गिरे हुए थे। इस कलयुग कहने लगा कि भगवत प्राप्ति के सब मार्ग बंद है, एक छोटा सा रास्ता है उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि एक महात्मा ने अपने गमछे से धागा निकाल के पत्थर को हटा दिया। बोला, ये ऐसा हमको बता रहा था कि केवल एक रास्ता भगवान के भक्तों के द्वारा, अगर भगवान के नाम का आपको मार्ग मिल गया तो फिर आप कलयुग में भगवान प्राप्ति कर सकते हो, और कोई रास्ता बाकी बचा हुआ नहीं है, ये मुझे संकेत देके गया, इसलिए चलो तो अब हम भगवान की भक्ति करने चलेंगे। कलयुग हमको सावधान करने आया था, कलयुग का समय शुरू हो रहा है। तो कलयुग में ये सब गाथा कहने का भाव ये है कि ये चारों ओर आपको चीजें देखने को मिल रही है। तो कलयुग अपने चरम सीमा के ऊपर तो अभी नहीं है, अब तो आरंभ के दिन है कलयुग के, लेकिन आगे चल के कलयुग बहुत बड़ा भयानक रूप धारण करेगा। और ऐसा वर्णन बहुत शास्त्रों में कलयुग की भविष्यवाणियां भी की हुई है, कलयुग की भविष्यवाणियां बहुत शास्त्रों में की हुई है, और छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख उसमें लिखा हुआ है। तो कलयुग से सावधान होना चाहिए, जैसे पांडवों को सावधान करने कलयुग आया ऐसे शास्त्र हमको सावधान कर रहा है कि भविष्य के अंदर कलयुग के अंदर बहुत बड़ा मुश्किल समय आना वाला है। तो हमको सावधानी करनी चाहिए कि अब जल्दी जितना भी आरंभिक कलयुग का समय है इसमें हम अपना काम निपटा लें, वापस कलयुग के घोर समय में न आना पड़े तो ऐसी कोई यत्न कर लें। फिर एक बार कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि परीक्षित महाराज इतना महान था, कलयुग को तो जीत ही लिया था, काल रूपी कलयुग को उसने अपने अधीन कर लिया था, तो उसको मार क्यों नहीं दिया? मार ही देना चाहिए ना। ऐसे रावण के लिए कहते हैं कि अरे भाई जब वाली ने रावण को कांख में दबा ही लिया था तो फिर उसको मार ही दिया होता तो ये उधम तो नहीं बचता ना आगे। कुमाल है कि वाली चार समुद्रों के ऊपर सुबह संध्या वंदन करने जाता था, एक समुद्र के ऊपर संध्या वंदन करता था, वहां से भाग के दूसरे पे दूसरे तीसरे, तो रावण पीछे से वो संध्या वंदन कर रहा था, वाली पीछे से आ रहा था उसको दबोचने के लिए। वाली ने ऐसे देख लिया लेकिन संध्या वंदन अपने बंद नहीं की, जैसे रावण नजदीक आया उसको उठा के पकड़ के ऐसे बगल में दबा दिया, अपना संध्या वंदन किया और उस रावण बगल में दबा हुआ दूसरे समुद्र कूद के गया, उसकी तीसरे समुद्र कूद के गया। जब वो अपने घर आया तो छाड़ के नीचे फेंका रावण को, रावण ने देखा उसको, तब रावण बुद्धिमान था, बोला इससे वीर रखना ठीक नहीं, बोला तुम मेरे मित्र बन जाओ। कमाल का आपका हमने बल देखा कि किसे मेरे को उठा के समुद्र दस मेरे सर है और मैं तो नाखून से आपको काटा, कुछ पता नहीं लगा आपको। तो कहते हैं कि बाली ने उसको पकड़ के रखा था जब रावण को, तो उठा के जा रहा था कांख में तो मार ही दिया होता तो अच्छा था, तो तुम पीछे परेशानी तो नहीं होती, तो भाई क्यों छोड़ दिया था? तो इसलिए कभी कभी कहते हैं घर में कचरा आप इकट्ठा करके झाड़ू से एक कोने में रख देती, बाहर नहीं फेंकती है, तो वापस उड़ के वहां घर में आएगा, कहीं बाहर थोड़ी जाएगा। तो जब आपने एक बार उसको हाथ ही कर लिया तो उसको निकालो, खत्म कर दो ना। ये आतंकवादियों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया तो फिर कोई दूसरा उसका भाई जो जहाज को ले जाएगा अगवा करके, हाँ क्यों प्लेन ही उठा के जाएगा कि हमारे, मार ही दो ना उसको, बच्चे ही नहीं तो कथा समाप्त हो गई, तो उसको रखा क्यों बजवा? तो ये प्रश्न उठा कि कलयुग को छोड़ा क्यों परीक्षित महाराज ने? तो भागवत से एक श्लोक निकाला कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है कलयुग में? बोलो, सोचने से पाप नहीं लगता है, करने से पाप लगता है। सोचने से कितना भी बुरा सोचो तो पाप नहीं लगता है, लेकिन करने से लगता है। लेकिन अच्छा काम केवल सोचो तो फल मिलता है, करना न करो केवल सोचो तो भी फल मिलता है। तो परीक्षित महाराज साधु था, देखा कि इतना बड़ा लाभ लोगों को हो जाएगा, कम से कम मन से सोच के कह सकता है 10 गाय दान दे दी, इतना तो कर सकता है ना, तो भी उसको फल मिल जाएगा। लेकिन नहीं करेगा, और मन से कितना भी बुराई करता ले लेकिन हाथ से नहीं करेगा तब तक उसको दंड नहीं मिलेगा। तो महाराज ने देखा कि इसमें युग में लोगों का थोड़ा जरा हित तो अच्छी तरह से हो सकेगा, और बहुत आसानी से केवल भगवत नाम के स्मरण के द्वारा लोग भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, जो दूसरे युगों में संभव नहीं था वो बहुत सरलता से प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग को महाराज ने रहने दिया, इसका उत्तर ये भागवत में ही वर्णित है कि इसलिए कलयुग को परीक्षित महाराज ने जीवन दान दे दिया था। और क्षत्रिय का धर्म भी है, कोई शरण में आता है तो उसको जीवन दान देना चाहिए, ये उसकी महानता में आता है, उसका गुण है। तो कलयुग आ ही चुका है, हम कलयुग के प्राणी हैं, समय समय के ऊपर हम पथ भ्रष्ट होते रहते हैं, ये कलयुग अपना तो रमूना दिखाता रहेगा, हमको अपनी सुरक्षा का कोई प्रबंध करना पड़ेगा। ये बुद्धिमानी होनी चाहिए हमारी कि कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हम अपना जीवन ऐसे शैली से बनाए कि कोई समय हम भगवान के स्मरण से वंचित न हो। तो कलयुग कब हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा? जब हम भगवान को भूल जाएंगे। भगवान की स्मृति रहेगी तो कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता है। तो अब हमको देखना है कि हम कैसे अपना हर समय भगवान के स्मरण में लगा सकते हैं, काम करते हुए चलते फिरते हर समय हमारा मन भगवत स्मरण में लगा रहे, भगवत स्मृति बनी रहे, तो कलयुग के प्रभाव से हम बच सकते हैं। कम से कम सुबह और शाम दो टाइम, उपाध्याय ने कहा हमने सुबह भागवत और शाम को भगवत गीता, ये दो शास्त्रों के बीच में सारे दिन को कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये दो बहुत विशेष अस्त्र हैं आपके, कि सुबह भगवत गीता भागवत का श्रवण करके अपने काम पे चले जाओ, कलयुग आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। जैसे टीका लगा के कोई पोलियो के चार ड्राप पी के फिर शहर में घूमता है तो पोलियो के जो जो वायरस है वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपके रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि पोलियो आपके ऊपर प्रभाव नहीं करता। तो ये इम्यूनाइजेशन है सुबह का भगवान का कथा के भगवत भागवत का श्रवण करके गए तो इम्यूनाइज हो गए, लेकिन फिर भी सारा दिन बाहर रहे कुछ ज्यादा ही कीटाणु बाहर थे अगर, तो शाम को आके भगवत गीता का श्रवण कर दिया तो फिर उनको वापस हमने भगा दिए। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल सैंडविच है, ये आपका जीवन स्पिरिचुअल सैंडविच बन गया। दो भगवत स्मृतियों के बीच में सारा दिन के 12 घंटे बिल्कुल दब के नहीं के बराबर बच जाएंगे, दो ये चीजें विशेष आपके जीवन में। फिर रात को सोने से पहले श्रीमद् भागवत की कृष्ण परम पुरुष भगवान दशम स्कंद की कोई लीला का स्मरण करते सो जाएंगे तो सोते हुए भी कलयुग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ना हरि नाम तो करना ही है, लेकिन ये तीन साधन है जो आपको सुरक्षित रखेंगे कलयुग के। जैसे तीन टाइम रोटी खाते हैं तो पूरे सारे दिन के लिए शक्ति मिल जाती है ना, भाई ब्रेकफास्ट किया दोपहर को खाया और सायंकाल का खाया, तीन टाइम खाते हैं तो सारा दिन उसमें पुष्टि मिल जाती है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो सब दुनिया इसके ऊपर सारा दिन तो नहीं खाती रहती, ऐसे तीन बार ही ऐसे भगवत स्मरण का हमारा ये भगवत कथा के अध्ययन का हमारा नियम बन जाए तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसे तीन टाइम का दो टाइम का भोजन सारे दिन के लिए आपको सुरक्षित रख सकता है, आपकी शक्ति बनी रहती है, ऐसे दो टाइम का आध्यात्मिक ये भोजन है, कथा आध्यात्मिक भोजन है, ये हरि कथा आध्यात्मिक आपका भोजन है जो आपकी आत्मा को इतना पुष्ट करेगा कि कलयुग के प्रभाव से आपको मुक्त रखेगा, कलयुग के प्रभाव से आपको सुरक्षित रखेगा। तो कैसे भी संभव नहीं होता है सुनने का भागवत तो अपने घर में पढ़ने का नियम बनाओ, घर में पढ़ने का नहीं है तो गाड़ी के अंदर कम से कम दो घंटे घंटा जब सफर करते हो तो सत लगा दिया करो, कम से कम थोड़ा तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ शब्द आपके कानों में पड़ेंगे। तो जैसी व्यवस्था हो, मंदिर में नहीं आ सकते हैं घर में पढ़ लो, घर में टाइम नहीं है जल्दी 7 बजे ऑफिस जाना है तो गाड़ी में लगा दो, लेकिन ये रोज सुनने का नियम बनाए रखो। केवल कथा श्रवण से ही भगवान में आसक्ति उत्पन्न होगी, भगवान में आस्था हमारी बढ़ेगी, भगवान की महिमा कथा गुण सुनने से। तो कथा सुनने का नित्य निरंतर एक नियम बनाए रखना चाहिए, पुस्तक पढ़ना अथवा कथा सुनना या शास्त्र जाके मंदिर में सुनना, जो भी सुलभ हो उसको निश्चित रूप से उपयोग में लाना चाहिए। और आज एक वैष्णव महात्मा का तिरुभाव तिथि है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का, ये 1600 में के अंतिम में पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जगन्नाथ विप्रा के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, और श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके पिताजी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिष्य थे और घनश्याम दास उनका नाम था, और ये नरसिंह चक्रवर्ती श्री निवास आचार्य के जो है उसमें आते हैं परंपरा में। नरहरि बाल ब्रह्मचारी रहे, अपना शुद्ध जीवन था, साधु जीवन था, बहुत निम्रतापूर्वक अपना जीवन उन्होंने बिताया। कहते थे कि मैं अयोग्य हूं भगवान की सेवा के लिए, मेरे पास मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये तो वो कहते थे, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े कलाकार थे, नृत्य में गाने में वाद्य में बहुत बड़े प्रवीण थे, विशेष रूप से जो म्यूजिक है उसमें बहुत बड़े प्रवीण थे, भक्ति शास्त्रों को भी ठीक तरह से जानते थे, अच्छी तरह से
और ये नरहरि जी भगवान की कृपा से वृंदावन में रूप गोस्वामी के ठाकुर गोविंद जी के रसोई बनाने का काम इनके ऊपर सौंपा गया। इसको रसोईया पुजारी के नाम से जाना जाता था। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान के लिए बनाया करते थे। जहां जहां भी गए उन्होंने धर्म के नियमों को स्थापित किया और वैष्णव ने बड़े सत्कार के साथ इनका सम्मान किया। बहुत समय तक अपने गुरु की और अपने पिता की और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए गोविंद देव की सेवा में वृंदावन में निवास किया। वो अपना चंदन को घिस के भगवान को लगाते थे, लकड़ी जंगल से लाते थे, पूरे मंदिर का मार्जन करते थे, तुलसी के पत्ते इकट्ठे करके भगवान के भोग के लिए, मंजरी भगवान को अर्पण करने के लिए। और पुराने जमाने में पंखे नहीं थे तो एक कपड़े का बांधा हुआ था मंदिर में होता था, उसकी रस्सी बाहर हुआ करती थी। तो जब भगवान के सहन का समय है, पट बंद हो जाते हैं, तो बाहर बैठ के वो रस्सी से भगवान को समय, जैसे गर्मियों के समय में बैठ के पंखा करते रहते थे। दस आदमी जितना काम करते थे लेकिन अपने आप को हमेशा निम्र बनाए रखते थे। और पुजारी कहते थे आप थोड़ा काम को कम कर लो, हम कर ले लेंगे, लेकिन वो अपने काम को कभी छोड़ते नहीं थे। कहते थे मैं गिरा हुआ हूं, मुझे कुछ सेवा करने तो मुझे वो तो कुछ करना आता नहीं। अंतिम समय भगवान के स्मरण में उन्होंने बिताए, सबका बहुत बड़ा सम्मान करते थे। ब्रजवासी भी नरहरि को बहुत बड़ा प्रेम करते थे और उनको उनका बड़ा सम्मान करते थे। सत्तर साल की आयु तक रहे तब भी भगवान के भोजन, भगवान की जो 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 रसोई का काम करते रहे। उन्होंने कुछ पुस्तक भी अपने जीवन में लिखे, नरोत्तम विलास, नाम अमृत, समुन्दर, श्रीनिवास चरित्र, संगीत सार संग्रह, भक्ति रत्नाकर, गौर चरित्र समुद्र, ऐसे कुछ पुस्तक है जो ये नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार, आज नरहरि सरकार का है। ये तो नरहरि चक्रवर्ती हमने पढ़ा, नरहरि आज है नरहरि सरकार का, मेरे ख्याल नरहरि सरकार, जहां तक मेरे को याद आता है। वो नरहरि सरकार महाप्रभु से मिले थे, वही मैं देख रहा हूँ, नरहरि आदि कोई चंवर दुर्त नरहरि मेरे ख्याल में सरकार है आज मेरे को जहां तक याद आता है। ब्रज रस की, हाँ है तो देख लीजिए, ब्रज राधा गिरिधारी के ब्रज रस के बहुत बड़े काव्य लिखे हैं उन्होंने। ये गदाधर पंडित के साथ नरहरि और गदाधर पंडित दोनों महाप्रभु के संग में रहे, भगवान को चमर किया करते थे, जो हम पढ़ते हैं अभी तक, और नरहरि आदि चंवर डुलावे हैं और कभी मोर पंख करते थे। भक्ति में ठाकुर गौर आरती में इनकी महिमा गाई है, हम रोज गाते हैं। वैष्णव परिवार से थे, श्रीखंड में इनका जन्म हुआ था और उनके बाद एक पूरी शाखा ही भक्ति की वहां चल पड़ी, भगवत प्रेम की। भगवान श्री गौरचंद्र के बाद खंड के अंदर गौड़िया वैष्णव के प्रचार का बहुत बड़ा केंद्र बना। श्री नित्यानंद प्रभु भी उधर गए और नरहरि से जाके पूछा, आप जानते मैं कौन हूं, कहां है मेरा शहर, मेरा मधु कहां है। देखिए नरहरि ने बहुत बड़ा चमत्कारी रूप से उनको वो मधु का एक बर्तन दे दिया, बहुत बड़े प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु। श्याम सुंदर को ब्रज लीला में मधुमती के रूप में सेवा करते हैं अपने असली स्वरूप में, प्राण सखी। राधा दामोदर को वो मधु का पानी देती है, उस सखी की सेवा इनकी ब्रजलीला में है। राधा कृष्ण प्रेम से उनका जीवन बहुत भरा हुआ था, कितना वो गहराई उनकी राधा कृष्ण की सेवा में थी ये जानना बहुत मुश्किल है। ये राधा की बहुत प्रिय सखी मधुमती है और गौरंग लीला में नरहरि महाप्रभु के पार्षद रहे हैं। चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है, उन्होंने पद कल्पत्रु कृष्ण भजनामर्थ जैसे पुस्तक लिखी है, उनमें भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की प्रभु की महिमा है। श्रीपद वी बी नरहरि बहुत सुंदर भजन नरहरि ठाकुर ने लिखे हैं। श्री लोचनदास ठाकुर और दूसरे कई नरहरि के शिष्य हुए हैं, उनकी समाधि राधा कुंड में है नरहरि सरकार की। तो बहरहाल ये हमारे जितने संत महात्मा हुए हैं इनकी जीवन पढ़ने के समय उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी भक्ति जो उन्होंने भगवान की और भगवत प्राप्ति की प्रेम की, वो कृपा करके हमारे जीवन में उनकी कृपा बरसे। तो केवल वैष्णव पद रज अभिषेकम, वैष्णव के चरणों की रज का से अभिषेक अपने जीवन में करना अथवा उनकी जीवन से हमेशा सदा के लिए प्रार्थना रहना कि उनकी कृपा हमारे ऊपर होती रहे, तो फिर भक्ति भगवत भक्ति में हमारा आगे जो है प्रगति हो सकती है। तो नरहरि सरकार महाप्रभु के पार्षद है, उनको प्रार्थना करते हैं जो भाग्यशाली वृंदावन में हैं तो राधा कुंड जाके उनके समाधि के ऊपर उनका स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसे पहला स्कंद में तीन अध्याय जो पहले हैं, ये तीसरा अध्याय चल रहा है। भागवत का मतलब भगवान के समान, जैसे भग शब्द का मतलब छे, जिसमें षड गुण संपन्न जो हो। छह गुण क्या है? वैराग्य, श्री, यश और ज्ञान, सौंदर्य, यशस्य वीर्यस्य क्या कहना जी मां, छह गुण कौन से? 1 2 3 4 5 छह गुण, सौंदर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य, बल, श्री। श्री छह गुण। तो भागवत माने भगवान के समान छह गुणों से संपन्न है, षड्गुण संपन्न है। इसलिए पहले स्कंद में छह प्रश्न ही छह पूछे गए हैं, समयकादि छह ही प्रश्न पूछते हैं सुखदेव सूत गोस्वामी से। तो छह प्रश्न से ये छह विषय ही प्रतिपादित है भगवान के छह गुण, जो सदा के लिए संपूर्ण रूप में नित्य निवास करते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो उस भगवान इसमें प्रश्न भी छह ही पूछे गए हैं, सारे प्रश्न होने के बाद भी छह ही गुणों का प्रतिपादन किया गया है। तो भागवत भगवान का प्रतिपादन है और ये तीन अध्याय पहले इसमें अधिकार के दृष्टि से दो पहले वक्ता और श्रोता का वर्णन किया गया। सूत गोस्वामी वक्ता है और सनक आदि ऋषि श्रोता है, ये पहले तीन अध्यायों में ये चीज का निरूपण हुआ। और पूरी भागवत का उपक्रम है तीन अध्याय पहले। उपक्रम है मतलब भागवत में क्या है उसकी बीज रूप इन तीन अध्यायों में है। पहले तीन श्लोकों में श्रुति, ब्रह्म सूत्र, गायत्री, सृष्टि इन सब का वर्णन केवल पहले तीन श्लोकों में है, मंगलाचरण के श्लोकों में। जन्मादिस्य श्रुति है, ये ब्रह्म सूत्र है। धीमई गायत्री है, ये वेदों का अंग है। सृष्टि कैसे भगवान से होती है, रहती है और प्रलय होती है, ये सब केवल तीन अध्यायों में पूरे का पूरा सब भागवत का उपक्रम है। लेकिन वो एक अथ शब्द कहने से पहले श्लोक में अथ शब्द नहीं है, ब्रह्म सूत्र में अथ अथा ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे है ऐसे अथ जन्म आदि अस्य है उसमें, इसमें अथ शब्द नहीं है। इसको क्यों नहीं है ऐसे? इसलिए नहीं है कि ब्रह्मसूत्र पढ़ने का अधिकार केवल ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण को, हर एक नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये भागवत भगवान के समान है और भगवान का भजन करने का सबको अधिकार है, भगवान का भजन करने का अधिकार भक्त सब बन सकते हैं। जैसे जो शास्त्र में कहते हैं भक्तों यथा निरप, जैसे राजा की सेवा करने का सारी प्रजा को अधिकार है। भाई जो 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 रोड साफ करता है, झाड़ू निकालता है, वो झाड़ू निकाल के देश की और राजा की सेवा कर सकता है। किसान खेती के द्वारा राजा की सेवा कर सकता है, कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुनने के द्वारा कर सकता है। तो राजा की सेवा करने का सबको अधिकार होता है, ऐसे भक्ति करने का अधिकार सबको है। इसलिए ब्रह्म सूत्र इसमें है, लेकिन फिर भी भागवत के श्रवण करने का अधिकार सबको है भागवत का, तो ये विशेषता इसमें है। गायत्री इसमें है, लेकिन वो गायत्री तो केवल कुछ ही लोगों को जपने का अधिकार हुआ करता था, जो नेम होता है उसका, लेकिन ये इसमें सबको। तो ये विशेष रूप से भगवान का प्रतिपादन तीन अध्यायों में है। श्रोता और वक्ता के हिसाब से सनकादि ऋषि और सूत गोस्वामी का तीन में है। इसके बाद तीन अध्याय आएंगे दूसरे, उसमें नारद और व्यास का संवाद है, उसमें वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास। तीसरे जो उसके बाद जो 13 अध्याय बच गए, 19 अध्याय हैं सारे, 13 अध्याय बच गए, उसमें 12 अध्याय में केवल परीक्षित महान श्रोता है उसका प्रतिपादन किया है, और एक अध्याय में सुखदेव महाराज का थोड़ा सा संकेत रूपी वर्णन। तो सर्वश्रेष्ठ श्रोता परीक्षित महाराज को स्थापित किया गया है भागवत के पहले स्कंद में अधिकार के दृष्टि से। तीन पीढ़ियों से तो पितामह वाले भक्त थे और तीन पीढ़ियों से माता वाले भक्त तो सामने दिखते हैं, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा, ये तीनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सामने दिख रहे हैं। और उधर से पांडु वंश कौन सा था, पुरु वंश और कुरु वंश है, लेकिन दोनों वंशों से पांडु वंश अलग हो गया, पांडव अलग हो गए, कुरु भी नहीं रहे, पुरु भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये व्यास की संतान था, पांडु स्वयं तो व्यास का पुत्र हो गया ना, और फिर पांचों पांडव देवताओं के अंश थे, ये साधारण नहीं थे। ये तो इंद्र का अंश था, अर्जुन धर्मराज का अंश था, युधिष्ठिर भीम वायु का अंश, ये तो साधारण थे नहीं, और ये भगवान के परम भक्त थे। और अभिमन्यु परीक्षित का पिता वो तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के ही संग में शिक्षित रहा है। तो ये सब दिखाने के लिए के परीक्षित कितना महान था, और इनके केवल वंश के अंदर जो थे सबका उद्धार भगवान ने अपने हाथों से किया है, इन सब चीजों का वर्णन तीन ये 12 अध्यायों में केवल परीक्षित के अधिकार के, यही योग्य अधिकारी था। ब्रह्म अस्त्र परीक्षित को मारा था अश्वस्था में मना में, तो भगवान ने स्वयं जाके उसकी रक्षा की थी, श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा की थी। अब ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म वांगमय अस्त्र है, श्राप है ब्राह्मण का, तो भगवान ने भागवत के वांगमय रूप से उसकी रक्षा की। भागवत भगवान का वांगमय रूप है, शब्द रूप है, वो शब्द से ही छाप दिया गया, और भागवत के शब्द से उसका निराकरण किया गया, निवारण किया गया। तो ये विशेष रूप से पहले स्कंद का इस तरीके से विवरण है। ये तीन अध्याय जो है, ये सौनक और सूत संवाद, तो ये श्रोता ऐसे हैं कि इनका यज्ञ विशेष, उनका उद्देश्य यज्ञ, सारा दिन शाम को टाइम बचता है तब कथा सुनते हैं, तो कथा सुनना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इनमें बहुत टाइम के बाद भागवत का फल मिलेगा। व्यास और नारद भी लोक कल्याण के लिए ही आपस में चर्चा कर रहे हैं, और बहुत समय तक समाधि में रहने के बाद व्यास ने भागवत का जो है ये निर्माण किया, रचना की। तो उनका उद्देश्य भी केवल भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं था, लेकिन परीक्षित तो सवाय भगवत प्राप्ति के और कोई उद्देश्य था ही नहीं, और सुखदेव केवल भगवान की कथा सुनाने के अलावा और कोई उद्देश्य था ही नहीं। इसलिए पहले स्कंद में अधिकार के हिसाब से कौन श्रोता कौन वक्ता होना चाहिए, किस प्रकार का श्रोता वक्ता होता है, उसमें परीक्षित की महिमा के ऊपर बहुत ज्यादा पूरा स्कंद उस बात को प्रमाणित करने के लिए के कैसा महान भक्त था परीक्षित, जिसके लिए भगवान ने भागवत रूप को प्रवण। नहीं तो परीक्षित जैसा महात्मा कोई अपराध थोड़ी ब्राह्मण का कर सकता था, जाके समाधि में बैठे हुए ब्राह्मण के गले में सांप नहीं डाल सकता था। वो तो परीक्षित साधारण व्यक्ति नहीं था, उनके द्वारा। और ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लोग कहते हैं कि कलयुग उसके माथे के ऊपर मुकुट था, उसमें कलयुग निवास किया। प्रभुपाद जी इस बात का निराकरण किया, इस मान को स्वीकार नहीं किया है। कोई कहते हैं ऐसे कई बातों में आई है कि उन्होंने सोने में रहने का दे दिया था, पुराना जरासंध का मुकुट पड़ा था, अपनी बल से नहीं लाया हुआ बड़ों का था, डाला था उसमें कलयुग ने वास किया। लेकिन जो ब्रह्म अस्त्र से मारा नहीं जा सकता है उसको, उसके ऊपर जिसने कलयुग को अपने ही जीवन काल में दंडित करके शरणागत कर दिया था, वो कलयुग परीक्षित के ऊपर अपना प्रभाव डाले ये संभव नहीं है। ये तो भगवान ने विशेष रूप से भागवत के अवतार करने के लिए, भागवत के अवतीर्ण के लिए परीक्षित के द्वारा ये एक लीला करके दिखाई थी कि परीक्षित को भागवत, परीक्षित के लिए भागवत को प्रकट करना था। तो इस अध्याय के जब ये पहला स्कंद पढ़े तो विशेष रूप से हमारी दृष्टि परीक्षित के ऊपर होनी चाहिए कि उसकी योग्यताएं कितनी महान थी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? हाँ भाई, ये हमारा है, कौन सा सिंह है भाई? सत्यवीर सिंह, बोलिए। किसका? चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवत के एक श्लोक में है और अन्य शास्त्रों में तो है ही, लेकिन भागवत के 12वें स्कंद में नव योगेंद्र हैं वो जहां वर्णन करते हैं, उस वर्णन में श्लोक ये आता है, कृष्णावर्णम त्वेष कृष्ण, कृष्णावर्णम क्या है, त्वेष कृष्ण सांगो पंग अस्तर पार्षदे यज्ञ संकीर्तन जजंते सुमेधसा। भगवान कलयुग में कृष्ण आएंगे लेकिन कृष्ण रंग नहीं होगा उनका सांवला, तो पहचानेंगे कैसे? बोला उनके साथ अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, जैसे भगवान सुदर्शन चक्र ऐसे नहीं, उनके संग उनके पार्षद होंगे, उनके साथी होंगे। बोलो कैसे पहचानेंगे? बोला संकीर्तन यज्ञ करते हुए पहचान, केवल वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, और जो केवल बुद्धिमान है वो उनको ऐसे समझ सकते। तो ये एक भागवत में ये एक श्लोक विशेष रूप से उल्लेख करता है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य के विषय में। और भी बहुत श्रुति शास्त्रों से, एक छोटा पुस्तक किस जमाने में निकाला था, हमने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु विषय में भविष्यवाणी कहाँ कहाँ है। लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं, भक्त के रूप में गौण अवतार है, गुप्त रूप में अवतार है, वो तो भक्त के रूप में अवतार है, प्राय संसार में उसको भक्त ही माना जाता है। राधा भाव द्युति अंगीकार करी, राधा रानी के भाव को, भक्ति के भाव को और उनके रूप को, उनके रंग को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु अवतार हुए थे। तो केवल जो बहुत निकट के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और भक्त हैं उनको भगवान के रूप में, कृष्ण राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, राधा कृष्ण दोनों एक रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये विशेष भाव है, ये तो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन प्रायः एक महान भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु को भारत वर्ष और जो 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 मेडिवियल पीरियड है, जो संतों का समय विशेष रूप से रहा है, गुरु नानक साहब जिस समय में रहे हैं, तुलसीदास जी रहे हैं, कबीर रहे हैं, ये जो समय है, इस समय में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख इन सब की गिनती के साथ आता है, और विशेष रूप से आता है कि जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर सबको भगवान का मंदिर में आके और भगवान का नाम लेने का अधिकार दिया। यहाँ तक के पाकिस्तान के जो 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 सोशल स्टडीज हिस्ट्री है उसके अंदर चैतन्य भक्ति तहरीक इन्हें बोलते हैं आंदोलन को, चैतन्य भक्ति आंदोलन के कोई 10 लाइन उधर भी पढ़ाया करते। तो ये एक हिस्ट्री में, इतिहास में चैतन्य महाप्रभु का ऐसे उल्लेख है। और कहाँ मैं एक और एक मैं अभी इस टाइम लास्ट ईयर पाकिस्तान में था तो मैं पढ़ रहा था कि कुछ मुस्लिम चेतना महाप्रभु मेरे संघ में आए थे तो वो परिवर्तित हो गए, उनमें से कोई एक था उसमें नाम उसका उल्लेख किसी किया है, तो जो इतिहासकार है वो जानते हैं चेतना महाप्रभु के विषय में। इतिहास की दृष्टि 500 साल कोई दूर की बात नहीं है, ये तो मुगल काल है, ये मुगलों का काल है, सभी मुगलों के ही सूबेदार करते थे हुकूमत, 500 साल तो कोई दूर की बात नहीं है। लेकिन भगवता उनकी जानने वाले बहुत कम लोग हैं, जैसे कृष्ण के भगवान होने के समय में भी कृष्ण को भगवान करके जानने वाले बहुत कम थे, सामने होने के बाद भी तो सब नहीं जान पाते थे, तो ऐसे महाप्रभु को भी बहुत कम लोगों ने भगवान के रूप में जाना है। लेकिन दयामय अवतार है, करुणामय, महावदन्नाय, बड़े बड़े करुणामय, औदार्य लीला है चैतन्य महाप्रभु भी, औदार्य लीला है, औदार्य मतलब बहुत उदार है, पापी तापी नहीं देखते हैं, कोई भी शरण में आएगा तो उसका उद्धार कर लेंगे, तो विशेष रूप से कलयुग में पति तपावन रूप में औदार्य लीला है उनकी। कृष्ण माधुर्य लीला है, कृष्ण की लीला माधुर्य है, महाप्रभु लीला औदार्य है, वो औदार्य, उनका धाम भी औदार्य है, तो महाप्रभु की कृपा के बगैर कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, और महाप्रभु की कृपा नित्यानंद की कृपा के बला नहीं मिलेगी, और नित्यानंद बलराम जी है, बलराम जी गुरु शक्ति है, गुरु में जो शक्ति होती है वो बलराम जी की है, और गुरु में जो करुणा होती है वो राधा रानी की, राधा और बलराम जी दोनों गुरु के ऊपर जब कृपा करते हैं तब गुरु किसी का उद्धार कर सकता है, भगवान की भक्ति और प्रेम दे सकता है, तो करुणा माँ राधा की है और शक्ति बलराम जी की है, ये गुरु के अंदर दो चीजें होती हैं। एक वृंदावन में बहुत सुंदर दर्शन है, उसका नाम भी है गोरे दाऊ जी, वो राधा रानी गोरे रंग में है, बलराम जी का उसको बलराम जी का ड्रेसिंग किया हुआ है राधा रानी, तो गोरे दाऊ जी मानो के जैसे गुरु का शक्ति का बहुत स्वरूप है विशेष रूप से, कभी जाएं तो परिक्रमा मार्ग में गोरे दाऊ जी को देखना चाहिए, देखा है कभी गोरे दाऊ जी? परिक्रमा मार्ग में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गोरे दाऊ जी का, छोटा सा अर्थला चूंकि थोड़ा अंदर में है, वो राधा रानी है लेकिन वो गोरे रंग में है, दाऊ जी के रंग में, वो एक बार खेल रहे थे कृष्ण और सखा एक तरफ, बलराम जी आए नहीं थे, बलराम जी नहीं आए थे तो कृष्ण से कैसे कोई करेगा, कुश्ती करनी है मल युद्ध करना है तो राजा रानी ने बलराम जी के कपड़े पहने, वो पगड़ी बांध ली पीली और वो कृष्ण के साथ युद्ध, कृष्ण के राजा कृष्ण बलराम के रूप में राजा रानी कर रही है, तो अब दोनों में जो हो रहा है तो राधा रानी को कृष्ण का स्पर्श होते ही कृष्ण गिर गया नीचे, तो राधा रानी जीत गई, बोले बलराम जी जीत गए, तो बलराम जी तो थे नहीं तो राधा रानी थी, तो उस दिन उनका जो ये स्वरूप है तो उसको गोरे दाऊ जी के नाम से फिर उसका हो गया, तो ये विशेष रूप से, तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए महाप्रभु के पास जाना पड़ेगा, महाप्रभु कृपा करेंगे, राधा की कृपा उनके पास है तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन महाप्रभु कृपा कब करते हैं? जब नित्यानंद किसी को आशीर्वाद देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं तो महाप्रभु की कृपा मिलती है, लेकिन नित्यानंद किसको कृपा करते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं नित्यानंद की कृपा उसको मिलती है जो बहुत ही गिरे हुए दुखी पीड़ित लोगों को जाके भगवान के नाम का प्रचार करता है, उसको नित्यानंद की कृपा मिलती है, जितना नीचे से नीचे गिरे हुए लोग के ऊपर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करेगा वो नित्यानंद की कृपा का पात्र बनेगा, भगवान के प्रचार में जितनी ज्यादा जो जोखिम उठा के रिस्क उठा के जाएगा, जगाई माधाई जैसे किसी का उद्धार करने का प्रयास करेगा तो नित्यानंद बहुत प्रसन्न होकर अपनी कृपा करेंगे, तो सार ये निकलता है कि जो प्रचार में लगा हुआ है वो नित्यानंद की कृपा का पात्र हो सकता है, और प्रचार भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बड़े छोटे का देख कर नहीं, जो भी आए छोटा बड़ा, मैं देखा कल पुस्तक वितरण करने वाले रिक्शे वाले को भी कह रहे थे, स्कूटर वाले भी कह रहे, कार वाले भी कह रहे थे, तो कभी हम कहते हैं इसके रिक्शे वाले के ऊपर टाइम क्यों खराब करें, लेगा कि नहीं लेगा, अरे भाई भगवान की कृपा के लिए सबको निमंत्रण देना चाहे, कोई भाग्यशाली ले ना ले, लेकिन हम किसी को वंचित क्यों करेगा, अरे ये नहीं ले सकता ऐसे करेंगे तो इसका मतलब अब हम उनमें भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ये तो आंखें बंद करके सबको कहना चाहिए हरे कृष्ण, भाई भगवान का नाम लो, भगवान का शास्त्र पढ़ो। अब जो ले सकेगा वो भाग्यशाली है, लेकिन हमको सबको मौका देना चाहिए। ये नित्यानंद दृष्टिकोण है, नहीं केवल एक ही वर्ग को हम प्रचार करेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं, झूपड़पट्टी में भी जाके कीर्तन करेंगे तो हम जाएंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, और बहुत बड़े किसी के घर में जाना है तो भी जाएंगे। हमारे लिए दोनों समान रूप से प्रचार तो समान रूप से करना है। तो ये जीवन में जगत शैली आएगी तो फिर नित्यानंद की कृपा का भाजन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज एकादशी है भाई।